हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 10 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणं भुजास्वः महत्तमान्तर्हृदयामुखच्युतो विदत्स्वकर्णयुतमीशमीवर नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय श्लोक संख्या 10। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि, अब किस तरह से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और देवताओं की जो इतनी सुंदर प्रार्थना सुनी। देवताओं ने कहा कि आपने हमें विभिन्न कार्य करने के लिए नियोजित तो कर लिया, परंतु हमारे अंदर न योग्यता है, न सत्ता है, न शक्ति है, तो हम ये कार्य कैसे करेंगे। तो फिर भगवान किस तरह से प्रत्येक देवता को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, किस तरह से प्रत्येक अंग के अंदर शक्ति प्राप्त होती है, उसके विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो हम इसको श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 10 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितं अदुक्षजः विराजम् अतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्सवे विवृत्तये स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितम् अदुक्षजः विराजम् अतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये शब्दार्थ स्मरण विश्वसृजाम ईशो स्मरण मना स्मरण करते हुए विश्वसृजाम विश्व यानी विश्व की रचना का कार्य बाहर संभालने वाले देवतागण सारे देवताओं ने भगवान का किसका स्मरण किया ईश यानी भगवान का विज्ञापितम यानी उस्तुति की भगवान का स्मरण किया भगवान की उस्तुति की किस किस भगवान की अदोक्षज यानी ब्रह्म की तो विराजितम विराजम यानी विराट स्वरूप अतपत यानी इस तरह से विचार किया फिर भगवान ने विचार किया क्या स्वेन तेजसा एषाम विवृत्तये स्वेन यानी अपनी तेजसा यानी शक्ति से एषाम माना उनके लिए विवृत्तये यानी समझने के लिए अनुवाद परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया कि और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। अब देवताओं ने जब भगवान की बहुत स्तुति की भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर विचार किया कि अब इनको मैं किस तरह समझाऊं समझाने के लिए विराट स्वरूप को प्रकट किया और प्रत्येक अंग में जो देवताओं का कार्य है उसके लिए भगवान स्वयं पहले विराजमान हो जाते हैं क्योंकि कण कण में व्याप्त हैं तो इस तरह से सारे देवता जो हर अंग की सुरक्षा के लिए हैं उनको शक्ति प्रदान करने के लिए उन देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कारण के महत्व का अनुमान जो प्रमाण जो उसका परिणाम निकलता है उसको देखकर लगाना चाहिए ना। ये जो निर्विशेषवादी हैं वो सोचते हैं जो भी विराट स्वरूप के बारे में वो तो एक भ्रमित धारणा है। वे सोचते हैं विराट स्वरूप जो है वो कल्पना है। लेकिन अब आगे श्री प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं उदाहरणार्थ माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीवात्मा है। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयं एवं ना तो आकार ग्रहण कर सकता है ना विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है तो यह समझना चाहिए कि सभी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। यह विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ जिस तरह किसी पशु का शरीर विकास करता है। अतएव यह धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है तर्कसंगत है। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे ये नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर मिसाल देते हुए कि किसी को लग सकता है कि एक रज और वीर्य यानी कुछ नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है कि माता के गर्भ में सिर्फ अगर रज और वीर्य के मिलाप से एक बुदबुदा सा उत्पन्न हो जाता है और उसके अंदर इतना विकास होता है धीरे 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 शरीर बढ़ता है और शरीर के अंदर कितनी नसें हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसका जितना आकार है, अगर सारी नसों को, शरीर की नसों को मिलाकर अगर ज्वाइन किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड जितना आकार है उनका, इतना लंबे, तो इतना सुन मतलब शरीर, उसको विकसित करना, उसके अंदर हड्डियाँ, उसके अंदर जो हृदय है, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं वो सारे उत्पन्न करना, क्या ये ऑटोमेटिकली हो जाता है? बस माता के रज और पिता के वीर्य से हो जाता है? नहीं, वो उसके अंदर भगवान का अंश है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है एक जीव, तभी जाकर उसके अंदर इतना विकास हो रहा है। एक केवल रज और वीर्य से कुछ नहीं है। तो और ये इसी तरह से इस संसार में जो कुछ भी हमें विकसित होता दिखाई दे रहा है, हर वस्तु का विकास क्यों हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है, इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर भगवान का स्वरूप है, विराट स्वरूप में भगवान प्रत्येक कण में। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस तरह से भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा या परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते हैं, वो नहीं सोचते, ये जो संसारी लोग हैं वो नहीं जान पाते, बस वो समझते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, हृदय धड़क रहा है और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो आत्मा और परमात्मा की बात नहीं मानते। उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे ये नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। इसीलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवांग मन सागोचर अर्थात शब्दों तथा मनों की धारणा से परे कहा गया है। तो भगवान जो है ना, हम उसको अपने शब्दों में समझा सकते हैं, ना ही मन की कल्पना से उसको समझा जा सकता है, ना ही वैदिक ज्ञान से उसको समझा जा सकता है। अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्म को शब्दों तथा मनों की सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जाने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतक द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं समझ सकता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि आप कभी मत सोचना कि हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने मानसिक चिंतन से, मेंटल स्पेकुलेशन से या अपने शब्दों के से किसी को भगवान समझ आ सकता है या कोई भगवान समझा सकता है। ये जो सारी शास्त्र हमें जितने भी शब्द बताते हैं वो भगवान को समझने के लिए नहीं है। ये गीता भागवत भगवान को समझने के लिए नहीं है कि किसी तरह से हम भगवान की ओर अपना आकर्षण डेवलप कर सकें, किसी तरह से हमारे हृदय में उस भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके, प्रेम उत्पन्न हो सके, उसका बस प्रयास है ये सब। बाकी भगवान को समझना, वो जो समझ में आ जाए वो भगवान कैसे हो सकता है, है ना? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार PhD वाले अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ऐसे गर्वित PhD लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न की तुलना कूप मंडूक के दर्शन की जा सकती है। जब एक कूप मंडूक को विशाल प्रशांत सागर की जानकारी दी गई तो वह प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूल कर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया और वह मर गया। PhD उपाधि की विवेचना हल यानी कृषि विभाग से की जा सकती है। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वाले वालों के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्यों के पीछे कारण के को समझने के प्रयास की तुलना उस कूप मंडूक से की जा सकती है जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुएं का मेंढक हो और उससे आप कहो कि कुएं का मेंढक बोलो आपको पता है महासागर कितना बड़ा होता है, तो कुएं का जो जो मेंढक है उससे नहीं पता, वो फूल के बताता है इतना बड़ा, नहीं उससे भी बड़ा, वापस बोल और भी फूलता है, बोला इतना बड़ा, नहीं उससे भी बड़ा। तो ऐसे करते 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 वो अपनी उसके अंदर उतनी सत्ता ही नहीं है, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो महासागर का स्वरूप धारण कर सके। उसने तो केवल कुएं को ही देखा ना, तो उसको कुएं का साइज पता है, लेकिन महासागर का समुद्र का साइज नहीं पता। तो इसी तरह से जो यहाँ के PhD हैं, जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं, वो उनको सिर्फ भौतिक जगत के बारे में ही वो भी थोड़ा बहुत पता है, उसके बारे में भी सारे ब्रह्मांडों के बारे में नहीं पता, पृथ्वी लोक के बारे। तो वो उसी अपने मंद बुद्धि ज्ञान से वो भगवान की तुलना करते हैं। तो ये प्रयास तो उस कुएं के मेंढक के प्रयास की तरह है, जिस तरह यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी कि PhD उपाधि की विवेचना हल यानी कृषि विभाग से की जा सकती है। जैसे मजदूर किसान जो होते हैं वो किस तरह से हल चलाते हैं, या उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विराट जगत के तथा ऐसे अद्भुत कार्यों के पीछे कारण को समझने की प्रयास की तुलना। अभी क्या है, वो सिर्फ धान के खेत को जोतते हैं जहाँ पर अनाज उगाया जाता है, और उनके माइंड में ये कि बस यही पूरी पूरा यही पूरा ब्रह्मांड है, हालांकि वो तो एक पोर्शन है। उसी तरह से जिस तरह कुएं का मेंढक ये नहीं समझ पाता कि विशाल समुद्र क्या है, उसी तरह से ये मजदूर ये किसान ये नहीं समझ सकते कि पूरा संसार क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं PhD वाले भी ऐसा ही कार्य करते हैं, उनको भी वास्तविक भगवान के विषय में, भगवान के अद्भुत कार्यों के विषय में समझ में नहीं आ सकता। और श्री प्रभुपाद जी आगे बहुत ही सुंदर बात बताते हुए कहते हैं कि भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अव्ययों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। तो यहाँ भगवान को समझने की केवल एक ही विधि है। भगवान कहते हैं भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेव विदोर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के साथ, केवल श्रद्धा के साथ ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान ने कहा कि जिसको मुझे मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसको भगवान और भगवान के शब्दों के अंदर, भगवान के इस पवित्र नाम के अंदर श्रद्धा नहीं है, जो शंका करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है, ये केवल नाम से हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, ये जो गीता और भागवत है वो सत्य कैसे हो सकता है, जो सारा जीवन केवल शंकाएं करता रहता है ना, उसके लिए भगवान ने कहा कि संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना, जो संशय करते हैं उनका विनाश हो जाता है और इस लोक में और परलोक में उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे जो महान कार्य है वो क्या है, श्रद्धा है, और श्रद्धा हमारी अपनी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको कुछ संभाल के रखना है ना, अगर किसी की सुरक्षा करनी है ना, तो अपनी श्रद्धा की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है ना, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं हमारी श्रद्धा को डगमगाने के लिए, और माया तो हर वक्त मुंह खोल के बैठी हुई होती है कि कब हमें निगल ले, कब हमें दबोच ले। इसलिए भगवान और भगवान नाम के प्रति जो हमारी श्रद्धा है ना, उसकी सदा सुरक्षा करनी चाहिए। ये भक्ति जो है वो एक नाजुक से पौधे की तरह हमारे हृदय में उत्पन्न हुई है। और जो एक कुशल माली होता है ना, वो क्या करता है, जब उसको अपने खेत के छोटे छोटे पौधों की सुरक्षा करनी होती है ना, तो पूरे खेत के चारों तरफ कांटों की बाड़ लगा देता है। वो कांटों की एक बाड़ इसलिए लगाई जाती है कि बाहर से कोई पशु, कोई पक्षी, कोई हानिकारक वस्तु आकर मेरे छोटे छोटे पौधों को कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए। उसी तरह से हमें अपनी भक्ति वृक्ष की बहुत बहुत संभाल करनी है, उसको संभालना है, सुरक्षित रखना है ऐसे लोगों से जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान की शब्दों को, भगवान के नाम को नहीं मानते, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है यदि हम सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा श्रद्धा जो है वो बहुत शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए हमको सदैव भक्तों के संग रहना चाहिए जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में हैं और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि हम भक्तों का संग करेंगे तो हमारा विश्वास जो है वो बहुत बहुत दृढ़ होता जाएगा। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथ तस्याभितप्तस्य कतिधा यतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। अथ तस्याभितप्तस्य तस्य कतिधा यतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे मदतः शृणु। अथ तस्य अभितप्तस्य, अथ मना इसलिए, तस्य मना उसका, अभितप्तस्य मना उसके चिंतन के अनुसार, कतिधा यानी कितने आयतनानि मतलब विग्रह थे निरभिद्यन्त अभिनांश द्वारा देवानाम तानि मे गत शृणु। देवानाम मन देवताओं का, तानि मन उस उन समस्त, मे गदत यानी मेरे द्वारा वर्णित किया हुआ, शृणु तुम सुनो। यानी कि अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि जब भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली तो उन्होंने क्या किया। अनुवाद देखिए, मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो, मैं गदता शुणु, यानी भगवान वो विदुर जी को कह रहे हैं, मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग कर दिया। अब भगवान ने विराट रूप प्रकट किया ही इसलिए था कि देवताओं ने प्रार्थना की थी कि भाई हम ये कार्य कैसे करें, तो भगवान ने जैसे अपना विराट रूप प्रकट किया और फिर अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग कर दिया। जितने भी देवता हैं उनके रूप में अपने आप को एक्सपेंड कर दिया, और उसको बहुत ही डिटेल से आगे बताया जाएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश हैं। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर
उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं। अब जितने भी देवता हैं वो भी सारे अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के अंश हैं। भगवान ने कहा ममैव अंश जीवलोके, जितने भी जीव हैं तो देवता भी जीव हैं और वो भी भगवान के अंश हैं। और देवता और जो साधारण जीव होते हैं उनमें फर्क कितना है कि जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं, जब जीव बहुत सारे साधारण जीव जब भगवान की भक्ति कर लेते हैं उनके पास बहुत सारा पुण्य एकत्रित हो जाता है और वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है। मतलब वो फिर सोचते हैं कि हम भगवान के लिए कुछ करें, आनंद उठाएं, लेकिन साथ में भगवान के लिए कुछ करें। भौतिक प्रकृति पर वो प्रभुत्व नहीं जताना चाहते हैं लेकिन आनंद उठाना चाहते, साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करना चाहते, भगवान की सेवा भी। तो देवता के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं कि वहां पर क्या होगा, भगवान इस संसार को रचना करेंगे तो भगवान की सेवा भी हो जाएगी और साथ साथ में उनकी भोग भोगने की इच्छा भी पूरी होगी। तो जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपते हैं, फिर भगवान उनको अपने जो कार्य हैं वो सौंपते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अब किस तरह से भगवान ने अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया उसको यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ पर तस्याग्नि रास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशत पदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासो प्रतिपद्यते तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशत पदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासो प्रतिपद्यते। तस्य यानि उसकी, अग्नि यानि अग्नि, आस्यम यानि मुंह, निर्भिन्नम यानि इस तरह वियुक्त, लोकपालो विशद पदम, लोकपाल यानि भौतिक मामलों के निर्देशक, अविशद यानि प्रवेश किया, पदम यानि अपने 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 पदों को, वाचा स्वांशेन वक्तव्यम, वाचा यानि शब्द, स्वांशेन अपने अंश से, वक्तव्य यानि वाणी, यया सौ प्रतिपद्यते, यया मना जिससे, असौ यानि वे प्रतिपद्यते यानि व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट किया किस तरह से उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्द के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। सबसे पहले क्या, उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई, भगवान अब अपने आप को विश्व रूप में प्रकट कर रहे हैं, उनके मुख में जो अग्नि है वो विलग हो जाती है और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। अब ये जो अग्नि है उसके कार्य, उसका कार्य जैसे मुख में अग्नि का कार्य होता है तो उसके अंदर देवता सम्मिलित हो जाते हैं और जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है, फिर शब्द निकलना शुरू होते हैं और वो उसी अग्नि, ये वास्तव में ये बताया जा रहा है कि ये सब भगवान की सत्ता से हो रहा है, जो हम शब्द जो हमारे मुख से निकल रहे हैं वो भगवान के मुख से निकली हुई अग्नि के द्वारा। तात्पर्य भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है, अग्नि तत्व का निर्देशक इसका नियंत्रण अथवा आदिदेव है, अभिव्यक्त वाणियां आध्यात्म या शरीर कार्य हैं और वाणियों की विषय वस्तु आदिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भगवान की तीन शक्तियों, आदिदैविक, आदि अधिभूत और आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बता रहे हैं। कि जो अग्नि तत्व का निर्देशक, उसका नियंत्र अथवा अग्नि तत्व जो है वो आदिदेव है, जिसे हम अग्निदेव कहते हैं। अभिव्यक्ति वाणिया आध्यात्म या शारीरिक कार्य है, मतलब उस अग्नि के द्वारा जो कार्य हम कर रहे हैं, वाणी मतलब बात करना, वो क्या है, आध्यात्म है, शारीरिक कार्य है। और वाणियों की विषय वस्तु अधिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। वाणी का जो विषय वस्तु है वो क्या है, भौतिक वस्तुएं या उत्पादन जो भी संसार में है, जो हम दिख रहे हैं, यानी जो अल्फाबेट्स जिनको मिलाकर ये सब हमारे शब्द निकलते हैं, वो आदिभूत है। अब ये तो हुआ वाणी का, वो किस तरह से भगवान ने अपने, भगवान का जो मुख में जो अग्नि है वो विलग हो गई और इस तरह से शब्द बने, या फिर भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार उसमें प्रविष्ट हो गए। और इसके बाद क्या हुआ, आगे बता रहे हैं श्लोक नंबर 13। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो विषद्धरे जिह्वयाशेन चरसं ययासो प्रतिपद्यते। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो विषद्धरे जिह्वयाशेन चरसं ययासो प्रतिपद्यते। अब मुख तो बन गया जिससे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट कैसे आया है। निर्भिन्नम तालु वरुणा, निर्भिन्नम मतलब वियुक्त हुआ, तालु मतलब जो हमारा तालु है ना वो, और वरुणा मनी वायु का नियंता देव, जो वरुण देव है। लोकपालो विशुद्धरे, लोकपाल यानी लोकों का निर्देशक, अविशत यानी प्रविष्ट हुआ हरे यानी भगवान के। और जिह्वयांशेन चरसम, जिह्वया अंशेन यानी जीव के अंश से, जो हमारी जीव है उससे, च भी रसम यानी स्वाद, यया जिससे, असौ यानी जीव प्रतिपद्यते अभिव्यक्त करता है। अनुवाद, जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हो गया, जिससे जीव को अपनी जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त हुई। अब जब मुख बन गया था, शब्द बन गए थे, उसके बाद जीव जो है वो और तालु जो हमारा गले के टाइप दाम पर ऊपर जो है जीव के ऊपर, उसको बनाकर उसके अंदर वरुण देव प्रविष्ट हो गए। और वरुण देव ने भगवान के जो विराट स्वरूप का जो तालु है उसके अंदर प्रविष्ट होकर जीव से, जीव को यह शक्ति प्राप्त हुई कि वो स्वाद प्राप्त कर सके। उसके बाद निर्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णोरा विषतम पदम ग्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यय यतो भवेत्। निर्भिन्ने अश्विनो नासे विश्रोणा विषताम पदम घ्राणेनाशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। निर्भिन्ने अश्विनो नासे, निर्भिन्न मन इस प्रकार से पृथक हुए, अश्विनो यानी दोनों अश्विनी कुमार, नासे यानी दोनों नथनों में, जो नाक के नथने हैं उसमें, विष्णु यानी भगवान के, अविश्यताम अर्थात प्रविष्ट हुए, पदम यानी पद, घ्राणेनाशेन अर्थात अंश के रूप से सूंघने से, गंधस्य यानी गंध का प्रतिपत्ति अर्थात अनुभव, यत जिससे भवेत होता है। अनुवाद देखिए, जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए, जिससे फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकता है। अभी अश्विनी कुमार जो है वो जो नासिका है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जीव हर वस्तु की सुगंध को या दुर्गंध को रियलाइज करता है। उसके बाद निर्भिन्ने अक्षिणी त्विष्टा लोकपालो विशद्भवो चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। निर्भिन्ने लक्षिणो त्वष्टा लोकपालो विशद्विता लोकपालो विशद्विभो चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। निर्भिन्न अक्षिणी तुष्टा, निर्भिन्न मतलब इस प्रकार से, अक्षिणी का मतलब होता है आंखें, तुष्टा यानी सूर्य ने लोकपालक यानी प्रकाश का निर्देशक, अविशत यानी प्रवेश किया, विभो यानी महान का, चक्षुषा यानी अंशे, चक्षुषांश यानी दृष्टि के अंश से, रूपाणा रूपों को, प्रतिपत्ति यानी अनुभव, यत जिससे भवेत होता है। अनुवाद, तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई, प्रकाश का निर्देशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ नाम उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी, यहाँ तात्पर्य समझाया जा रहा है कि जीव की आंखों में शक्ति कैसे आई, जब विराट रूप की दो आंखें पृथक हुई, यानी भगवान विश्व रूप है ना भगवान का, तो फिर प्रकाश का निर्देशक जो सूर्य है वो उसके आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया, सूर्य जो है उसमें आंखों में, विराट रूप की आंखों में प्रविष्ट हो गया। और फिर जो जीव को आंखें प्राप्त हुई हैं वो उसी के अंदर उसी की सत्ता है, यानी देवता तो हैं, जैसे सूर्य देव देखने की सहायता करते हैं, आंखों के देवता कहलाते हैं, वरुण देव है और है ना जितने भी देवता हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी सत्ता नहीं है, ये पहले भगवान के विराट स्वरूप के अंदर प्रविष्ट होते हैं, विराट स्वरूप के अंशों में, उसके बाद जीव को सामर्थ्य प्राप्त कराते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हर एक अंग एक देवता की कृपा पर ही नहीं, बल्कि देवता के साथ साथ वो भगवान की असीम अनुकंपा के कारण कार्य कर रहा है। जो हम एक अपने शरीर से जो कार्य कर रहे हैं, हम स्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं, सांस लेने का कार्य कर रहे हैं, देखने का कार्य कर रहे हैं, बोलने का कार्य कर रहे हैं, सुनने का कार्य कर रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टमेटिक है, वो देवता उस कार्य को चला रहे हैं, लेकिन देवताओं को शक्ति देने वाले भगवान हैं। आगे बताया, निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शम् येनासौ प्रतिपद्यते। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शम् येनांसो स प्रतिपद्यते। निर्भिन्नान् यस्य चर्माणि, निर्भिन्नानि अर्थात पृथक होकर, अस्य यानी विराट रूप की, चर्माणि यानी त्वचा, तो विराट रूप की त्वचा यानी चमड़ी जब पृथक हुई तो लोकपालो नील, लोकपालो यानी निर्देशक, अनिल यानी वायु ने अविशत यानी प्रवेश किया, उस चमड़ी के अंदर वायु ने प्रवेश किया, और प्राणेनांशेन यानी श्वास के अंश से, स्पर्शम स्पर्श, येन जिससे, असौ यानी जीव, प्रतिपद्यते अनुभव कर सकता है। अनुवाद, जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। तो जो जीव को जो स्पर्श का अनुभव होता है वो कैसे होता है, विराट रूप का जो विराट स्वरूप जो भगवान का है उसकी त्वचा में जब जो निर्देशक देव है, वायु का जो निर्देशक देव अनिल है, वो स्पर्श हो जाता है, और उसके बाद जीव जो है वो
स्पर्श का अनुभव करता है।
उसके बाद बता रहे हैं कि सारे जीव श्रवण कैसे करते हैं। वे कहते हैं कर्णावस्य विनिर्भिन्नो देश्यम सम विविशुर्दश श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिन प्रपद्यते। कर्णावस्य विनिर्भिन्नो देश्यम सम विविशुर्दश श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धियेन प्रपद्यते। कर्णस्य विनिर्भिन्नो, कर्णो यानी दोनों कान, अस्य यानी इस विराट के, विनिर्भिन्नो यानी इस तरह पृथक होकर, देश्यम यानी नियंत्रण देव स्वम अपने से विविशु अर्थात प्रवेश किया, दिश यानी दिशाओं का, श्रोत्रेणांशेन श्रवण तत्व के साथ, शब्दस्य यानी ध्वनि का, सिद्धिम यानी सिद्धि, ये न प्रपद्यते जिससे अनुभव की जाती है। अनुवाद, जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए और जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तो ये ध्वनि जो आज हम श्रवण कर रहे हैं वो भगवान की कृपा पर निर्भर है, क्योंकि जब भगवान विराट स्वरूप जो उसके कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रण देव जो हैं वो श्रवण तत्व समेत उसमें प्रविष्ट हो गए, फिर उस उनकी ही कारण आज हम श्रवण कर सक रहे हैं। वास्तव में ये विराट स्वरूप और देवताओं की हम पर कृपा है। अनुवाद देखिए, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य, जीव कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि का कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कान की बहुत इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि जो भी ज्ञान है आज वो कानों के द्वारा हम उसको श्रवण करते हैं और मनुष्य के जीवन को वही जो श्रवण है वही पूर्ण बनाता है। तो संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण के करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। तो ये जो हमने जितने भी इन पार्ट्स जो कि कार्य कर रहे हैं, सुनने का, बोलने का, देखने का, वो सब भगवान के विश्वरूप और देवताओं की कृपा के कारण कर सकते हैं। वरना तो जीव के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक देवताओं के देवताओं की जो सहायता है वो न हो, तो जीव अपना कोई कार्य भी नहीं कर सकता, न खा सकता है, न स्वाद ले सकता है, न सो सकता है, न सोच सकता है, और न ही बोल सकता है, न श्रवण कर सकता है। तो इसके लिए हम कितना हम सब उन पर निर्भर हैं और साथ साथ में कितना उनका कृतज्ञ होना चाहिए।
आगे कहते हैं त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विविशुर देश्यमौषधि अंशेन रोम भी कंडु यह रसो प्रतिपद्यते। त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विविशुर देश्णयो द्विष्यमौषधि अंशेन रोम भी कंडुम यह रसौ प्रतिपद्यते। त्वचम अस्य, त्वचम अर्थात चमड़ी, अस्य मना विराट रूप की, विनिर्भिन्ना यानी अलग से प्रकट होकर, विविशु अर्थात प्रविष्ट हुआ, दिष्ण्यम अर्थात नियंत्रक देव, औषधि यानी संस्पर्श, अंशेन रोम भी कंडुम, अंशेन मतलब अंशों के साथ, रोम भी यानी शरीर के रोमों से होकर कंडोम यानी खुजली यानी जिससे असौ यानी वह प्रतिपद्यते अनुभव करता है। अनुवाद, जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। अब जो हमें हमारे हम किसी भी वस्तु के साथ जब स्पर्श करते हैं, अगर वो बहुत ही कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, तो हमें अच्छा लगता है, और अगर वो बहुत ही खुरदुरी होती है तो फिर वो हमको खुजलाहट जैसी लगती है। तो वो अनुभव कैसे होता है, वो भी जब भगवान विश्वरूप की चमड़ी उसकी जब अभिव्यक्ति होती है, पृथक हो जाती है, तो उसके अंदर उसका देवता प्रविष्ट हो जाता है और उसके कारण हमको यह अनुभव होता है। तात्पर्य, इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग हैं, स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषध्य है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोमों का बोध विषय खुजली है। तो चमड़ी से दो कार्य होते हैं, एक तो स्पर्श होता है और उसको कभी खुजली होती है, खुजलाहट होती है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है, कि चमड़ी जो है उसको ज्ञान कैसे होता है, त्वचा ये ज्ञान इंद्रिय है, उससे स्पर्श करने से उसको पता चलता है। और फिर शरीर के रोओं का बोध, जो हमारे शरीर में जो रोएं हैं उसका विषय खुजली है, उससे पता चलता है, खुजली होती है तो रोओं के कारण पता चलता है। आगे, मेन्द्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वदृश्रम क उपाविशत रेत संशेन येनासा वानंदम प्रतिपद्यते। मेन्द्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वदृश्यम क उपाविशत रेत संशेन येनासा आनंदम प्रतिपद्यते। मेन्द्रम तस्य, मेन्द्रम यानी जननांग, तस्य इस विराट रूप के, विनिर्भिन्नम यानी पृथक होकर। अब विराट स्वरूप भगवान का विश्व रूप है, उसके जो जनन अंग हैं वो जब पृथक होते हैं तो स्वदृश्यम यानी अपना पद कह, ब्रह्मा आदि प्राणी का ब्रह्मा जी को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रथम शब्द का होता है वर्णमाला में, और प्रथम जीव ब्रह्मा जी है, इसलिए उसको कह कहा जाता है। उपाविशत यानी प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जननांग, क्योंकि सृजन करने का कार्य ब्रह्मा जी का है, तो जनन इंद्रिय के अंदर ब्रह्मा जी है ना प्रविष्ट हो जाते हैं। और रेत साम अंशेन यानी वीर्य के अंश समेत, तो वीर्य होएगा तभी तो सृजन होगा, तो उसके समेत उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं। ये न जिससे असौ यानी जीव आनंदम, आनंदम मतलब उसके कारण जो यौन सुख है वो उसको आनंद यानी यौन सुख का आनंद प्रतिपद्यते अनुभव करता है, सेक्सुअल डिजायर्स को उसको आनंदित होता है उसके कारण। अनुवाद, जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, यानी कानों से सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं, आंखों से देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, तो ये भगवान की योजना है और उसके अंदर देवता उसकी सहायता कर रहे होते हैं, और स्पर्श से, चमड़ी से स्पर्श करके इस तरह से सारी इंद्रियों से आनंद भी प्राप्त हो रहा है, ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है
और ये भगवान की कृपा है, इसलिए जब तक हम इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, सिर्फ इनको ही आनंद का केंद्र मानकर इनके द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक ये हमारे बंधन का कारण बनेगा। और जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सब तो भगवान की सहायता से संभव है, ये इंद्रियां तो भगवान के द्वारा कार्य कर रही हैं और ये सारे देवता भगवान के निर्देशानुसार हमारी सहायता कर रहे हैं, तो हमको ये इंद्रियां इसलिए नहीं मिली हैं कि हम इनके द्वारा भोग भोगें, बल्कि इसलिए मिली हैं कि इनके द्वारा हम भगवान की सेवा करें। आगे कहते हैं, गोदम बोंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। गोदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत आयुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। गुदम अर्थात गुदा, पुंस यानी विराट रूप का, विनिर्भिन्नम यानी पृथक होकर, मृत लोकेश आविशत, मित्र यानी सूर्यदेव, लोक ईश यानी मित्र नामक निर्देशक, आविशत यानी प्रविष्ट हुआ, और पायुनांशेना, पायुनांशेना मतलब आंशिक वायु के साथ, येना जिससे, असौ जीव विसर्गम यानी मल मूत्र त्याग प्रतिपद्यते संपन्न करता है। तो अनुवाद देखिए, फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ, और अब जो है विसर्जन, जैसे हम कुछ खा लेते हैं कुछ पी लेते हैं, उसका विसर्जन भी करना होता है, त्याग भी करना होता है, उसकी जो इंद्रिय है उसके लिए, और मित्र नामक निर्देशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तो ये कार्य भी हमसे देवता करा रहे होते हैं। तो इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम होता है। अगर ये सारे कार्य हम नहीं, इसमें से एक भी कार्य का देवता अगर रुक जाए, समझो वो अगर अपना कार्य ना करे उस समय, तो फिर हमारे लिए जीना कितना कठिन हो जाए। तो ये सब देवताओं की हमारे ऊपर कृपा है, साथ साथ में भगवान की अनुकंपा है जो हमको इतना सिस्टमेटिक सारा शरीर दिया है, जो सिस्टम एक बहुत ही सुंदर तरीके से हम सारे कार्य कर रहे हैं, और वास्तव में ये सब करने के लिए भगवान ने शक्ति और सामर्थ्य इसलिए दिया है ताकि हम भगवत प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ सकें। आगे कहते हैं, हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रम स्वर्पतिराविशत वार्तायांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्र स्वर्पतिराविशत वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। हस्तौ यानी दो हाथ, अस्य विराट रूप के, विनिर्भिन्नो प्रतीक होकर, इंद्र यानी स्वर्ग का राजा, स्वपति स्वर्गलोक का शासक, आविशत यानी प्रविष्ट हो गया। तो अब हाथों के अंदर इंद्र जो है वो प्रविष्ट होते हैं, और वार्तया अंशेन, अंश यानी अंशतः व्यवसायिक सिद्धांतों के साथ उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं। पुरुष यानी जीव, यया वृत्तिम प्रपद्यते, यया मन जिससे, वृत्तिम यानी जीव का व्यापार प्रपद्यते चलता है। अनुवाद, तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ, और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। तो आज हम जो हाथों से कार्य कर रहे हैं वो भगवान के विराट स्वरूप के हाथों की शक्ति में जब इंद्रदेव का प्रविष्ट होता है तो उसी के कारण जो है वो अपने हाथों से हम अपना व्यापार चलाते हैं। उसके बाद पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेषु विष्णुराविशत् गत्या स्वंशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेषु विष्णुराविशत् गत्या स्वंशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते
पादो यानी पांव दो पांव अस्य विराट रूप के विनिर्भिन्नो पृथक प्रकट हुए लोक ईश विष्णु यानी विष्णु नामक देवता अभी लोक ईश विष्णु ये विष्णु भगवान नहीं है ऐसा आप लिखा हो भगवान नहीं श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक विष्णु नाम के देवता हैं आविशत उसमें प्रविष्ट होते हैं गत्या चलने फिरने की शक्ति द्वारा स्वंशेन अपने ही अंश सहित पुरुष जीव यया प्राप्य प्रपद्यते यया मना जिससे प्राप्य यानी गंतव्य तक प्रपद्यते पहुंचता है अनुवाद तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं विष्णु नामक देवता ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया जिससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है तो उसके बाद लिखा है बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्ना वागीशो देश्यमाविशत् बोधेनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तेर्यतो भवेत् बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्ना वागीशो देश्यमाविशत् बोधेनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तेर्यतो भवेत् बुद्धिम यानी बुद्धि च भी अस्य यानी विराट रूप की विनिर्भिन्नाम पृथक हुई वाक ईश यानी वेदों के स्वामी ब्रह्मा दिश्यम नियंत्रण शक्ति आविशत प्रविष्ट हुए बोधेन अंशेन अपनी बुद्धि अंश सहित बोधव्यम ज्ञान का विषय प्रतिपत्ति यानी समझ गया यत जिससे भवेत इस तरह होती है अनुवाद जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के देह का अनुभव किया जाता है तो यहाँ पर इतने सुंदर रीति से मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक जीव का प्रत्येक अंग जो है वो भगवान की कृपा पर निर्भर करता है देवताओं को भगवान ने आदेश दिया है कि आपको विभिन्न अंगों के कार्यों करने में यानी कार्य संपन्न करने में जीव की सहायता करनी है और देवता भगवान से कहते हैं कि भाई आपकी सहायता के बगैर तो यह हमसे होने वाला नहीं तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और प्रत्येक अंग को देवताओं को ये मतलब प्रत्येक अंग को पृथक किया और फिर प्रत्येक देवता को उसके अंदर प्रविष्ट किया और फिर हमारे जो शरीर चल रहा है हमारे हाथों से हम कार्य कर रहे हैं पैरों से हम चलते हैं कानों से सुनते हैं आंखों से देखते हैं मुख से बोलते हैं जिह्वा से स्वाद ग्रहण करते हैं और बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं वो सब के स्वामी दे जो है ना वो देवता वो भगवान के आश्रित हैं तो ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो वश में हो जाती ये सारी इंद्रियां जो हैं वो सही डिसीजन हमारी बुद्धि लेती अगर हम भगवान की शरण में होते हैं जब जीव भगवान की शरण में आ जाता है तो इंद्रियां उसे गलत कार्य करने के लिए उकसाती नहीं है क्योंकि वो सही रास्ते पर चल रहा है तो बुद्धि कभी गलत डिसीजन नहीं लेती है क्योंकि बुद्धि भी तो भगवान के ही निर्देशन अनुसार कार्य करती है मन में कभी गलत विचार नहीं आते क्योंकि मन भी तो भगवान के निर्देश आज हम इसलिए गलती पर होते हैं क्योंकि भगवान से खुद को अलग कर देते हैं लेकिन जब जीव भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करके स्वयं को भगवान के शरणागत कर देता है, तभी जीव अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है और अपने इस मनुष्य देह का वास्तविक लाभ उठा सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।